The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. And inshallah azza wa jal, today our topic will be What Do We Do Part 2. But it's a very vast topic and many things can be said and covered in this topic. Because we do on daily basis many things, many things. But we don't know they are right or wrong. So inshallah azza wa jal, today will be the part 2 of What Do We Do. There are lots of blessings to recite Durood e Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu has narrated, the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites Durood e Pak once upon me, and if he's accepted, Allah azza wa jal will forgive his 80 years sins. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aamal na dekhe ye dekha, mahbub ke kuche ka hai gada. مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ون ٹائم درود پاک وتھ سنسیئرٹی اخلاص کے ساتھ 80 ایئرس کے سن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جس کی زندگی میں درود پاک صبح دوپہر شام ہو تو اس کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی سو میک یور ہیبٹ دے ان شاء اللہ عز و جل وی ول ریسائٹ درود پاک ان ابنڈنس ان شاء اللہ حافظ عدیل ول اسٹارٹ ود دا ریسائٹیشن آف ہولی قرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم
سبحان الله سبحان الله
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حقی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حقی لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ حقی بٹتی ہے کو نین میں نعمت رسول اللہ حقی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ حقی اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ حقی تجھ سے اور جلد سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جلد سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ اے رضا خود صاحب قرآن قرآن ہے तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह हकी तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह हकी अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में ताकत रसूलुल्लाह की
सुभानअल्लाह 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 डियर व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल टुडेज टॉपिक What do we do? Inshallah, we'll start with Abdul Hanan bhai. Abdul Hanan bhai, kya karte hain? Pehle ye bhi sunte na. Is Abdul Hanan bhai, what do you do?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Sahab, again, this is throughout our life, every age, people are doing different things. When we were young, we were doing something different. As we get older, we're doing something. In our teenagers, we were doing something different. And as we get mature, we get married, we're doing something different. And then even old age, we are doing something different. So people are doing things in all ages. And what I'd like to start from is from the home. What we do inside the house and what we do outside the house. Because sometimes these two places we change. Now we're the same person, but outside the house we are someone else. But when we come inside the house, we are someone else. I don't know why this is, but this is something which we need to correct and change our way. Someone is smiling outside with everyone, laughing, having a joke, showing happiness and maybe showing humbleness like he's the most humble person. And when that person, he walks through the door, it's like...
Extra humbleness.
It's like the lions come out of the cage. It's a total different situation and the feeling and the way people are. And this like the own family seems to have fear. Oh, look who's walked in. The father's walked in like this and, you know, the children are hiding away, oh, dad's home. This is something, Sayyid Sahib, which we need to change, how we are when we are outside and when we are inside. And we need to work on this. There's so many things, Sayyid Sahib, we can mention as we are in the house and the things which we do in the house. For an example, if it's the husband and he's come home, we tend to just sit on our settees and just sit down and just put our feet up and we think we've done so much. Right, yeah. And now it's just our time to relax, and you're waiting for the glass of water to come, the orange juice to come, or the fruits to be laid in front of you in a tray. I don't know what we're expecting at that time.
Right, expect.
So these are things which we need to be looking at, and you know, same time we need to understand the family at home. She's the wife. She's been doing something as well from the morning. She's been maybe waking the children up long before we were woken up, getting them ready for school, sending them to make sure they're dressed, making food for them, and so on. And then, you know, when we come home, we're thinking she hasn't done nothing. So these are things, and it could be the other way as well. Sometimes the women of the household, you know, they might do a little and then they say, oh, I've been busy all day, right? And it could be that they've been busy on social media or so. But these are things which are happening in our homes, things which we are doing in our homes. It's like we tend to show a different aspect to the people. We want to make them look that we have done something, or we are doing something, or we have, you know, really worked hard. And a lot of the times it's just a feeling which we want the other person to feel that we've done something big, or we've worked hard. And this is something which we will need to overcome, Sayyid Sahib. It's what we do.
चलो आपने शुरू ऐसी चीज से किया घर से किया है उसमें दोनों सिनेरियो होते हैं यू नो फॉर एग्जांपल इफ यू गो होम एंड इफ यू सी दैट योर जुब्बा योर शर्ट इज नॉट बीन आयन एंड इफ यू रिक्वेस्टेड व्हाई माय शर्ट इज नॉट बीन आयन इज डन ऑर नॉट आई हैवंट गॉट टाइम आई वाज बिजी लेट मी डू इट नाउ आप दोनों सिनेरियो देखिएगा आई विल डू इट नाउ अब रिस्पॉन्स क्या होता है यानी बात खत्म हो सकती थी रिस्पॉन्स ही आएगा व्हाट हैव यू डन होल डे कहाँ बिजी थी गप्पे लगा रही होगी दोस्तों को फोन कर रही होगी सहेलियों को सोशल मीडिया पे बैठी होगी किया तुमने किया क्या है अब सामने से भी फूलों के गुलदस्ते आते हैं व्हाट हैव यू डन यू बीन आउट इन योर ऑफिस इन द एसी with the full heating there, cup of tea 6 or 7 time. आप कौन सा हल बैल चला के आ रहे हैं? आपने कौन सा पहाड़ खोदा है जो घर पे आ गया? अब बात जरी से निकली है, आगे बढ़ना शुरू हो गई है. मैं दोनों तरफ का रिस्पॉन्स होता है. मैं घर संभालूं, बच्चे संभालूं, हांडी संभालूं, I've done this, 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 the whole night. मैं बच्चों को भी देखूं, सुबह उठ के करूं, और आपको लगता है कि मैं कुछ करती हूं, आप खुद क्या काम करते हैं? अब बात थोड़ी सी हुई थी, लेकिन हफीज भाई बात कहां पहुंच गई? होना क्या था? सेकंड सिनेरियो में अर्ज करता हूं. Have you ironed my shirt? No, sorry, I was busy. Let me do it. सेम यहां तक. उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होना था? नहीं, आप रहने दे, बिकॉज यू डन अ लॉट एवरी डे. बच्चों के लुक आफ्टर की आपकी भी काम होता है, मैं खुद कर देता हूं इस्तरी. अगर आपका ये रिस्पॉन्स होता और सामने वाले का भी ये होता कि नहीं नहीं नहीं, आप भी तो सुबह घर जाते हैं ना, दिन भर काम करते, थके हुए होते हैं, सर में दर्द हो फिर भी जाते, हमारे लिए काम करते हैं, वापिस आते नहीं, इस्त्री मैं करूंगी. अब अगर घर में ये माहौल हो जाए, जस्ट अ स्लाइटली डिफरेंट, स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन क्या है, अदर साइड वी वर टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स, और दूसरे हैंड पर हम दूसरों के राइट्स की बात कर रहे हैं. सिर्फ फर्क इतना सा है, हम जब सिर्फ अपनी बात नहीं, दूसरों की बात करके मीठी जबान से, मीठे अल्फाज से बात करना शुरू कर देना, ये मामला ही खत्म हो जाए. होता यह है कि फूलों के गुलदस्ते आ रहे होते, वो भी गमले के साथ. अब गमले के साथ आए तो वो सड़ी फाड़ते हैं. तो दोनों सिनेरियो होते हैं. हस्बैंड वाइफ, जब आपने घर की बात की ना, होता है दोनों को देखना पड़ेगा. मैं क्या
बोलूं, सही साहब, यू नो व्हेन यू सेड दैट, ओह आई विल डू इट, वी डू से दैट, बट इट्स द वे इट कम्स आउट, सो आई विल डू इट, आई मीन इट, टेलिंग यू यू नीड टू डू इट,
इट कम्स इन अ सार्केस्टिक वे.
यस,
असल में ये दिस इज फॉर केयरिंग अदर्स. अब अंडरस्टैंडिंग द अदर पीपल राइट्स एज वेल, नॉट ओनली माय राइट्स, माय वे और नो, नहीं दूसरों के राइट भी समझने की बात है. अगर आप ये कह देते कि नहीं, और सामने वाला भी ये बोले कि नहीं नहीं, आप भी तो दिन भर काम कर रहे हैं, बात तो शुरू एक ही तरीके से हुई थी, लेकिन रिस्पॉन्स ने उनको झगड़े तक पहुंचा दिया. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता तो शायद ये बात ना, तो व्हाट डू वी डू, वी डू दीज थिंग्स एज वेल. क्या कहते हैं वसीम भाई, आप क्या लेकर आए आज?
अब्दुल नाम आई जस्ट स्टार्टेड ऑन दिस टॉपिक स्ट्रेट अवे, बट सो यस, इन रिगार्ड्स टू दिस, व्हाट डू वी डू, दिस इज अ क्वेश्चन एज वेल, एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट अ पर्सन इज फेस्ड विद थ्रू आउट हिज लाइफ. मेनी सर्कमस्टेंसेस, मेनी थिंग्स कम आवर वे, वेदर अ पर्सन इज यंग, वेदर अ पर्सन इज ओल्ड, वेदर अ पर्सन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, वी आर फेस्ड विद मेनी सिचुएशंस. And either we ask ourselves, what do we do in this situation? Or we ask someone with more experience that, what do we do in this situation? So obviously we're faced with this one major problem that unfortunately is happening in our society is, for example, now we're sitting in our car. We've had a burger, we've had a drink, we've had a can, we've got a bottle. It's all finished now. What happens is the window comes down and the bottle, the rubbish, everything goes out the window. Now we're walking down the street, we've finished something off, and talk, instead of throwing it in the bin, we throw it right on the floor, meaning right in the heart of the center. Now, see, it's up in regards to this, Islam has described cleanliness as the half of Iman. It's half of your Iman. Now, in regards to this, unfortunately, we see in our community, we see in our society, that unfortunately people, they don't pay attention towards cleanliness anymore. It's all about, you know, I can't go to the bin. You know, I'm so lazy, I can't go to the bin, I'll just throw it anywhere I want. But if we look at it, Islam has told us right from the start, as soon as a child is born, what's the first thing you do? You clean the child. Then what happens is, until the child gets mature, the parents look after the child. Then the child, once he gets a bit more mature, he starts to look after himself. And then what happens, once the person passes away, you do the ghusl al-mayyit, you clean the body to prepare him for the hereafter. Islam has given us this whole rota that you must remain clean. But unfortunately, in our society today, you know, we're throwing rubbish here. And you know what's something else that happens to yourself? That, you know, before a person throws the rubbish, he'll look around. He will look right, he will look left. He will look forward, he will look back. Is anyone watching me? Is any police watching me? He knows that if I throw rubbish on the floor, I might get a fine. He doesn't care about, you know, what Allah has mentioned, but he cares that, look, the police, if they see me, they're going to fine me £60, £100. So he's more worried about that. But Islam has described cleanliness as 50% of your Iman. And so, Yitzhak, in the last 200 years, there's been many inventions, the x-ray machines, the mobile phones, the tablets, the computers, the internet. But the scientists, the researchers of today tell us that many things have been invented, but the best things that have been invented in the last 200 years are those facilities, those items that help with the cleaning. So this is how much importance there is towards cleanliness. So what do we do? We should keep our society, we should keep our home, and we should keep our areas and the masajid clean, inshallah.
अपना घर तो साफ ही रखते होंगे, बाहर का जो है वो फिक्र नहीं होती है या पड़ोसी की फिक्र नहीं होती है, कचरा उठा के बाहर डाल देते हैं ना, अक्सर पुरुष भी करते हैं ना, देखा है, तो वो घर से इतना आने के जस्ट कॉमन सेंस के आप वो ले लेते पुरुष उठाने वाला, आपने कचरा जमा किया उसको जमा करते पुट इन द बिन, आप क्या करते हैं आपने बड़े पुरुष से निकाला और बराबर वालों के साइड पे डाल दिया, आपने डाल तो दिया, आपको क्या लगता है हवा वापस लेकर नहीं आ जाएगी, कल को वो भी ये करेगा, जो आप कर रहे हो कल को वो भी ये कर रहा है, होना ये चाहिए था अच्छे नेबर्स की। अगर देखे ना जैसे बिन वाला बिन लेकर गया, आपने देखा उसका बिन, आपने उठा के उसके साइड पे, कल को आप देखेंगे वो भी ये करेगा, वो खुद ब खुद आपके घर के आसपास को साफ करेगा जब आपने एक दफा ये काम कर दिया। लेकिन हम खुद जिसको सफाई की आदत होगी ना वो कचरा देखता नहीं है, फौरन उठा देगा, और जिसको गंदा रहने की आदत है वो फिर वेट ही करता रहेगा कोई और आकर उठाएगा। तो ये इस्लाम को पसंद नहीं है गंदगी, इस्लाम के अंदर सफाई निस्फ ईमान है। तो ये भी हमें देखना है कि व्हाट डू वी डू, हम मेस बहुत करते हैं, तो कहाते जहाँ जहाँ पर है, उठते जहाँ पर है, तो इस्लाम ने एक तरीका बताया खाने पीने का, उठने का, सफाई का, अल्लाह करे कि हम उस तरीके में उतरने वाले बन जाए।
So just want to add to what we're talking about cleanliness, where we help out filling someone else's putting rubbish somewhere, and that is something which also we see which is done, is someone's hired a skip. His skip is in front of his house at night, you find people coming out and filling their skip. Now someone's paid for it, he's got to fill his rubbish up there, but no, someone's coming out at night with bags and with rubbish of their home household and fill their skip up with that rubbish. He gets up in the morning, sees his skip to be filled with rubbish. Where it's come from, whose is it?
Sofa, wardrobe, everything is thrown into the skip.
बिल्डर ने मुझे बताया पिछले दिनों बात हो रही थी, वो कहता है उसने ना क्या किया, थोड़ा खुदाई करके ना तो घर के आगे थोड़ा सा जगह होती है हाउस, तो कहता उसी में भरता रहा। बोले भाई इसको उठा लो, बोले नहीं स्किप लाके रख दी ना, आपको पता ही नहीं होगा, आपने ये दो दिनों के बाद घर का काम निपटना है, एक ही रात में स्किप भरी होगी पड़ोसियों से, हमें पता भी नहीं होगा, लोग गाड़ियों में निकलते हैं और भर, यानी इस कदर लोगों को, मतलब लोगों ने माशरे को खराब कर दिया है, और इसमें हमारा भी हाथ है, ऐसा नहीं है कि वी ब्लेमिंग अदर पीपल, वी हमें अपने आप को भी देखना है कि हम खुद कितने सफाई पसंद है, हम खुद कितने कब बाहर कचरा हमने उठाकर रखा, कहीं खुद देखा किसी पड़ोसी के आगे कोई चीज है, अगर हम खुद इसमें हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर जो हो रहा है वो फिर सामने ही हो रहा है, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। माशाल्लाह हफीज भाई भी हमारे साथ हैं, हफीज भाई क्या करते हैं और लोग क्या करते हैं, आइए हफीज भाई के तासुरात लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी माशाल्लाह तुसा टॉपिक जड़ा आंदा ना ए ते शुरू च तुसा माशाल्लाह आया कि पहलो ये दसो कि सारी दिहाड़ी क्या करने हो, हम सारा दिन क्या करने असा, अच्छा फिर उस बाद फिर गल आई, फिर सारी जिंदगी पर गल आएगी क्या करने आ जी। ये जड़ा इस ना जुमला ना असा क्या करने आ, ये एक मैं समझना कि तुसा ने तरफों एक एहसास क्रिएट करने वाली गल है मुसलमाना ने विच, रोज क्या करने आ तो सारी जिंदगी च क्या करने आ, मैं समझना बच्चा पैदा होने सुखी नहीं क्या करने आ असा, उसकी बड़ा करने सुखी नहीं चलने तक कबर ने लाने तक क्या करने असा सारे इसकी देखने की बात है, क्या अल्लाह रसूल ते उसने जड़ी बाउंड्रीज है उसने अंदर करने हैं या क्या करने हैं। जैसे माशाल्लाह इन कराने हवाले भी गल्ला कीतियां ते घर अंदर और मामलाते बाहर और मामलाते असा क्या करने हैं ये, और इस तरह जो ये रबिश इन्हें माशाल्लाह दिता, तो इस गल यही है कि मैं एक गल करी फिर अगर टुरने हाँ तो इन्होंने बैग नहीं गल पाई ना, और चूंकि मैं ये समझना इस पहले इन्हें बाई जी घर आई लड़ाई मार कुटाई मार दाड़ सोचने नहीं बात है, वो बंदा जड़ा अच्छी लड़ाई मार कुटाई मार दाड़ करना पे ये करना पे शाउट करना पे घर ले आई गए डरी जाने घर ले अंदर रचना तो मतलब कोई इसको न बढ़ी गया कुछ उधर चला गया, ये बंदा इसने परवरिश कुत्थे होई
अल्लाह अल्लाह
ठीक है। हूँ सोचने वाले वहां जाना गल करे तो सियाना क्यास करे, या ना मतलब बच्चा कोई आम बेवकूफ बंदा गल करना ना सियाने गौर करने क्या गुफ्तगू थी ठीक है। इसकी जी ना मिसाल दिती अगर कुछ घर च है तो उत्थे उस घर ऑब्जर्व करने वाले कि सोचना चाहिए क्या वो जो बंदा इस वेले जो कुछ कर रहा क्या उसने बच्चे इसको सीख रहे कि नहीं सीख रहे, ये बंदा जो इन्हें डिस्क्राइब किया ना एक सीखी तो आया वा कुछ घर वो तखना रहा उसी क्या करना माड़ा आबा माड़े कार्य क्या होना, यह उस प्रोडक्शन होनी याद रखो असल को बच्चा अच्छा ना उसने बिहेवियर सो उसने गल्ला करने सो उसने एरोगेंस सो पता लगी जाना इसने घर च इसना क्या एटीट्यूड घर आह क्या मसला आ ठीक है इन्हें तो स्किप नहीं मतलब कुछ बिन नहीं गल कि बैक नहीं बजुर्ग से तो शायद मैं अगर भुनने ला पाया तो हूं ही इन्होंने गल ज्यादा ही अब्दुल्ला बिन मुबारक समान भिजवाया ने गुरै उनकाट फूला जाई रहा तो कोई बंदा आया तो हाँ जी खाता माड़ा भी दवाई छड़ोता है ये तो इन्होंने पूरे मतलब कचरे ने बैग नहीं गल करने ने और देखो इतने मैंने शरीयत ने अंदर जो अज गल की ना अस ये तखना क्या अल्लाह और रसूल जी दम कर रही हैं उसने अंदर बाकी गल तो जबाद करसा मामलात क्या है इबादात क्या है सारे क्या करने पे अस ठीक है अंजाम क्या उसी इसना और किस करने पता भी आ ठीक है कि नहीं ठीक है और पता कराया कुछ को ठीक है कि नहीं ठीक है जो करने है। उसके आने जी हाथ एक देना आने तक इस रेहड़ी वाले नाल मैं इस समाने ना सिर्फ सौदा किया वा इस खत ने नहीं किया स्किप वाले जो बंदे मंगवाया उसने को एक पेपर बनने की इजाजत किन्नी चाहिए नहीं है वरना कल कहने तो पूरे कचरे बैग नहीं गल की थी तो डर लगना सुनीत है इन्हें गलत सुनीत है उन्हें नहीं पाई इस रेडी वाले को जबान को इजाजत की ये हाथ मैं दे सकना कि ना क्योंकि उस शामिल नहीं है
सुभान अल्लाह।
और इतने देखो माशाल्लाह लेकिन गल यही है ये एहसास जिम्मेदारी है कि मैं असा क्या करने हैं क्या असा ठीक करने हैं कि असा गलत करने हैं मसलन इतू अंदाजा मैंने दसिया ना बच्चा रोना रोली पे बच्चा क्या कराना चाहिए और मैं पढ़िया सा एक असा नहीं पाकिस्तानी मुआशरे पाकिस्तान स्पैशल आ जो बच्चा रोना उसकी और मारने चुप कराने बच्चा अगर रोना है तो खुद असा क्या करने हैं बच्चा रोना उसकी तकलीफ दूर करो उसका मसला हल करो क्या तो भुखा हुआ है क्या तक पेशाब किया हुआ है क्या तो नापी गंदी है लेकिन असा ने हर काम इत मेरे को पूछो फीस भाई तुम क्या करने पे हो बच्चा रोना पाया था
तरबियत की कमी है असल में जो बात कर रहे हैं ना हम तालीम पे बहुत फोकस देते हैं एजुकेशन एजुकेशन ये याद रखें एजुकेशन में कोई वीकनेस होगी ना कोई कमी होगी उसको तरबियत तो ढाप सकती है लेकिन तरबियत में कमी होगी ना तो तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती ये याद रखिए तालीम तरबियत को नहीं पूरा कर सकती है तरबियत जो है ना वो तालीम की कमी को पूरा कर सकती है क्योंकि अदब बहुत है इस्लाम में इल्म तो शैतान के पास भी था लेकिन अदब नहीं था तो इसीलिए आज आप देखें ना कॉलेज यूनिवर्सिटी इधर पढ़े हुए कहते हैं एजुकेशन की तरफ फोकस है फिजा बता रही इसकी तरबियत कहाँ हुई है अब तरबियत किसी इस्लामी माहौल में इस्लामी यूनिवर्सिटी में ऐसे कल्चर में होती है जहां पे रिस्पेक्ट बताया जाता है नेबर राइट्स हस्बैंड राइट वाइफ राइट चिल्ड्रन राइट्स पेरेंट्स राइट ये बताए जाते हैं तो वो ये चीजें नहीं करता तो हुआ ये कि एजुकेशन पे फोकस है लेकिन तरबियत पे फोकस नहीं है इस वजह से इस वक्त जो है माशरा भी तबाही की तरफ जा रहा है तो मैं यही अर्ज करूंगा कि तरबियत पे भी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए इल्म की तरफ तो फोकस है हर दूसरा चाहता है कि अच्छी एजुकेशन हो अच्छी तरबियत वाले बहुत कम मिलते हैं जिसकी वजह से माशरे में ये बिगाड़ नजर आ रहा है।
सही साहब बिफोर आई गो ऑन जस्ट फॉर द व्यूज ऑफ मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग एट दिस मोमेंट बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द व्यूज ऑफ मदनी चैनल्स माइंड आउट देयर इफ दोज हु आर वाचिंग यू नो सेंड सम मैसेजेस इन थिंग्स व्हिच वी माइट लर्न फ्रॉम आल्सो What do they see what people do as well? So alhamdulillah, it's a good opportunity. We have this topic. This is what this program is, alhamdulillah, this path to success that we, alhamdulillah, together to able to perfect our society, to make our society better. Alhamdulillah, this is a great opportunity and things which we are doing. And everyone has their own experience in this. There are so many things which we are doing and everyone will come with their own unique stuff. Which may bring a smile on someone's face or may make us realize. Sometimes, Sayyidah, what happens is people are doing these actions but not realizing this action is wrong or not. You know, we continue to do it. It's like just the example of so quickly we tend to backbite regarding someone. You know, we speak ill of someone or he was like this. You know, he did this. And when you try to explain them, this is backbiting. No, but I'm speaking the truth. So this shows that when we are doing these type of actions, we feeling that these actions are okay. So you know, these examples, little examples which we are giving, these examples are there to us to reflect that these actions are wrong. We need to be able to rectify ourselves from these actions. And these examples, everyone has examples and experiences of their lives. You know, people do so many, for example, say it's up, what we see with our situation, with our traffic today on our streets, on our the streets were built, there weren't many cars. Now there's so many cars parked on the both sides. What you find so many times, and I've seen it on my road many times, that you come out in the morning, you find your side mirror's been ripped off. Mm-hmm. Now someone's hit it, and he's not bothered to stop. He's not bothered to find out who's hit the car. Never mind, just the side mirror. Someone hits into the car, scrapes the full side of the car, drives off. Don't care. People are not having the fear that how will I give account for this? I remember, I know, alhamdulillah, Sayyidina, there are people out there who have this. One of my neighbors, I was really pleased that he did this. He was driving with his van and he hit someone's car. Now he didn't know whose car it was. So he come and asked me, do you know whose car is? He asked a few of the other neighbors, do you know whose car this is? No one. Then what he did, he wrote a note. He put it into the windscreen and left it with his number on there. That I have hit your car. I don't know who you are, who's your car. Please contact me and we can take this deal forward. Alhamdulillah, there are people out there who are doing like this. Jeez. But what we are doing is the opposite. You know, any way to get ourselves cleared, to get away. But the reality is we can get caught for this. And we will get caught for this on the Day of Judgment when we've got to give account for it. So these are things which we are doing, Sayyid Sahab, out on our roads. Even in parking, people park in front of people's drive. And they, you know, someone's had his drive dug or made. He spent money. He's got the right, you know, that no one could park in front of. People park their cars, they go off. Your person is looking who's coming. Maybe it's an emergency. Someone has to take someone to the hospital. Someone's blocked his drive. And how are you able to explain to these people?
See, here we're talking about home. Even you come to pray, even especially Juma time. You're Jumma ki namaz ke liye aa rahe hain, lekin logon ki takleef ka baais ban rahe hain. Ye kisne aapko keh diya hai? मस्जिद में आ रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, किसी की ड्राइव ब्लॉक कर देते हैं, किसी की गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं, उसको जाना है, उसकी इमरजेंसी. आप ठीक है, आप नमाज पढ़ने आए, अल्लाह की इबादत के लिए आए, लेकिन ये थोड़ी राइट दे दिया गया कि आप दूसरों को जो है वो नुकसान पहुंचाते जाए. और जो ये इन्होंने बात की, वेरी कहते हैं ना, रेयर केसेस होते हैं जो ऐसा होता है, तो फाइंड वरना तो ज्यादा रन अवे वाले केस होते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट करके रातों को मार कर निकल जाते हैं.
वी डोंट टेक अदर पीपल्स feelings into consideration, how it's going to affect them, what consequences it's going to have on another person's life. Now, if you look at the Sayyid Sahab today, what happens, the major airports around the world, you know, Heathrow Airport, every 45 seconds is a plane taking off or a plane landing. Now, these kind of airports, if you look at it deeply, all day, there's going to be planes taking off and planes landing. But after 11 o'clock, it'll be very restricted. There's not going to be many planes taking off. What's the reason for this? The reason for this is because people are sleeping around. The people who live around the airport is going to disturb them. So this is why this policy is coming to place, that we should try to cause less disturbance to the people. Where has this come from? If you look at the life of Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala, when he was caliph, it's mentioned that he stopped the camels arriving in Medina to Munawwara in the evenings. Why? Right. Because when the camels would arrive, they would make noise, the sounds would come, and this would disturb the people. Allah. So 1400 years ago, Sayyidina Farooq Azam radiallahu ta'ala, in his amongst Medina to Munawwara, he explained this, that look, in the evenings, no one should disturb the people because this is the time for rest. But what's happening in our society? Abdu'l-Anbai, today what happens is that, you know, there's a wedding, 11 o'clock at night, 12 o'clock at night, 1 o'clock at night, everyone comes back home and the fireworks are going off at 11, 12, 1 o'clock at night. Meaning the whole road, the neighbors, everyone's sleeping, fireworks are going off at night. Then if you've spoken about driving, 12, 1 o'clock at night, full blast, sound is coming from the car. Meaning you're parking in the car, the neighbors are all disturbed because you're blasting the tunes and everything like that. So definitely we should take other people's feelings into consideration, inshallah.
वाकई फीलिंग की बहुत कहते हैं ना कमी है, वो हर कोई अपने ही हवाले से सोच रहा होता है. अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम, औरों के काम आने की तवज्जो दें.
जी शाह जी, बहुत जी गल एहसास नहीं बात है, टॉपिक चुने ना इसने पिछे छुपया वा, तू क्या करना, असा क्या करने रोज, एहसास हो सी ना फिर पता लग सी इस नाल मैं ज्यादती नहीं की, इस नाल मैं ज्यादती नहीं की. अच्छा उन इसने विच तुसा ये देखो, इन्हें कहता है घरों शुरू करो, चलो घरों शुरू करो, बाहर गल ही ना मन सूगी दस्या ना, एक दिहाड़ी ना असा तो जायजा कि नहीं है ना अपना, कि असा क्या करने हैं. सुन थोड़ी देर पहले गल की ना, इलम तो थिया तरबीयत को नहीं, इलम किताबा चा, इलम हूं तक हूँ मीडिया सारा,
تربیت صرف نیک لوگوں کو بہت ہوئی سکنی، اے میڈیا سارا تربیت نہیں کر سکنا، اس تو سنتا کہ چیز کنوے کری شوڑی اے کی نو ان اگے چاہینا تو کی نیک لوگ مثلا کار میں تو دس لگا بچہ ہے فرض کرو ٹھیک ہے ان بچے کی اسا تربیت کر جن میں دسیا نا او بچہ سیکھنا پہ ابے کو نو جی کہ میں بھی بڑے ہوئی تے یہ کرنا کیوں جو کچھ بچہ سیکھنا بانا بانے جو کچھ اتنے نہیں بچے سو سیکھنے تکھی تے سیکھنے جی سہی جا پتر سہی جا جلد سویا تو کہ پارک کھڑسا جی سہی جا ہوں اس کی پتا ہے کہ میں اس کی پارک نہیں کھڑنا کل نیس نہ کھڑیا اگر ابے یا اما تے بچہ سمجھی جاسی دو یا تری دھڑے ابے چوٹ مارنا جی ٹھیک ہے اچھا بچہ ادھر جسن پتر اے میں امیر السنت نے ساری مثال مند سن تربیت اسن پتر ادھر آ جا ادھر اچھا بچہ نیش نہ اس نے کول ٹھیک ہے او اٹھ سی تے جیکٹ تے ماما شی بچے بچے کی پتہ لگ سی کہ ان باہر جلیا حالانکہ اس مارو اس چوٹ سارا کیتا ڈرامہ ٹھیک ہے ان بچہ اگر آیا تو سب بالفعل جھوٹ بولنے پہ اس ویلے ٹھیک ہے یہ تربیت اسا بچے کی دے رہے ہونے ہاں پھر تھوڑا جہا بڑا ہو جانا انا یار تکھو یار یہ چنگے بچے اس نے جھوٹ مارنے یہ چنگے بچے جی اس نے چیٹنگ کرنے تو کچھ گلاس روڑی چھوڑے اس نے میں پوچھا کچھ دایا اس واسطے کہ اگر گلاس ٹوٹی گیا سا ٹئی پیا سا تو پوچھو جی کچھ توڑیا میرے کول ٹئی ٹوٹیا کوئی بات نہیں پتر آئندہ احتیاط کرے اس طرح ٹھیک ہے نا اور اس طرح ہی فرض کرو بچہ نکا جا آیا ٹھیک ہے بچہ نکا آیا اس نے کول پیالہ جا چایا ہوا سس دودھ سا کچھ اور ڈولی گیا ٹھیک تو پھر ڈولی چھوڑیا اس کی اے سینٹینس اے آ کہ یو تو جانی بجھ اور ڈولنا ایک چیز ہی لیکن اصل ایک احساس نہیں اساں نے کہا یہاں پہ اور اے چھوٹے بچے سے کوئی نہیں کرے چ اس نے مطلب کہ بچے نے ماؤ تک اصل اے ہی ہونا کہ گل کرنے والے ایسا سوچنے نہ کیا گل کر لگے ہاں سو تھوڑی دیر بڑا اچھا دیتا بلکہ میں تو اس سے اور بھی آنا چاہنا سا شرٹ استری کرنے سے بانے سے ہو بیوی کی شرٹ کرا استری آپ کری گی نا آپ نے کپڑے آپ استری کرو نا سرکار نے سنت سے آپ نے کام آپ کرنے ہونے سے تو تسا بیوی کول کیا کرانے جی آج آج تو آپ کسو نا
تو کیا ہو گیا
جی
ناراض تو نہیں
نہیں ناراض نہیں ہے بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں
کرانے تو کیا ہو گیا
نہیں نا بات یہ ہے آپ کے
مسئلہ ہو جائے ٹی وی پہ
بچے نہیں ہوگا انشاءاللہ بچے آپ کے دیکھیں گے نا یار ابا اپنا کام خود کرتا ہے بچی بھی آپ دیکھیں یار اب خود کرتے ہیں ٹھیک ہے تربیت کیسے ہوئے گی کس طرح اسی تربیت دسو نا
ہم کریں گے تو بچے سیکھیں گے تربیت ہوگی بہرحال ماشاءاللہ کافی زبردست حفیظ بھائی کے مدنی پھول اینڈ واٹ ڈو وی ڈو ہم کیا کرتے ہیں
سہی صاحب آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹرن ا بٹ ڈیفرنٹ بیکاز الحمدللہ دا پیپل ہو آر واچنگ مدنی چینل الحمدللہ دے ہیو سم لنک ود ریلیجن ود دا دین الحمدللہ سم انڈرسٹینڈنگ آف دین اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ وی ڈو ان دا میٹرز آف ریلیجن دا تھنگز وچ وی آر ڈوئنگ گڈ ایکشنز وچ وی آر ڈوئنگ اینڈ ہاؤ at times we are wasting them actions or how what we are doing them actions in riya. For an example, namaz, you take salah for an example. When we performing salah, how are we performing salah when we are performing on our own, and then how we are performing salah when we are in the masjid? There's a difference. Or how are we performing salah when there is someone watching us, and how are we performing salah when there's no one watching us? Again, this happens with our actions. Then if you look at other actions, for an example, fasting. Now, I want to go on to the nafli side of things, because for us fast, we have to fast. And everyone, it's nothing which we can hide. It needs to be aware. But when we fast on a nafli base, we want to sort of reveal it out to people. We need people to know that I am fasting today. And then we'll look for excuses or ways to get that message out to someone that I'm fasting. Maybe we'll hold our head and we'll say, I've got a bad headache today. Why have I got a headache? I've kept a fast today and, you know, it's been a long day. So we're revealing our actions. Or somehow or another, we want to come out with really thirsty, right? Because I've kept a fast today and my tongue's gone dried. These are the ways we're mentioning, last Monday I fasted and this Monday I couldn't fast. You know, somewhere or another, someone's gone to Hajj. I went to Hajj 1996 and then 2005 and then 2000, and then they reveal, one Hajj, okay, all the five or six Hajj we have done has been revealed. Umrah this much times, all these actions we just mentioning out to us. And then on top of that, say, yes, there's other things now. Outside our house, the we have a board stuck, Haji so-and-so.
Al-Hajj.
Al-Hajj, Hajj. And if someone asks you, what's your name? Haji so and so. Right, again, revealing our actions. Now, these are virtuous deeds, these are good actions, but we want other people to know. We want people to be aware of our actions. And if you, every aspect, when someone's giving sadaqah, same again, Sayyid Sahab, giving sadaqah, you know, I've built this masjid, so and so, you know, that poor family in Pakistan or so, some part of the world, alhamdulillah, paid for the whole marriage and everything, alhamdulillah, built a house for them, or we dig a well. Everything is being revealed with our actions. Although Ameer-e-Sunnat Damat Barakatuhu Ali, the tarbiyat Ameer-e-Sunnat gives us on this, hide these actions. There's no need to reveal. Alhamdulillah, understandable when you want to give targheeb, when you want to give a mindset to someone, and you mention it. Even then, Sayyid Sahab, alhamdulillah, there are brothers out there who will mention not themselves that I did this action. You know, so and so, a brother has done this. Alhamdulillah, look at the reward he will gain. We can give the mindset through that way as well. But we have to mention our own actions. I did this, you know, I did this, I've done this, I've done this. And it's like,
इसमें दो पहलू है ना. पिछले दिनों निगरानी शुरू की तरबियत फरमाई कि उसकी इंटेंशन क्या है. ये तो इन्होंने मेंशन की और वाकई एक है कि जबरदस्ती बयान कर रहे होते हैं. आज के दौर में तो वैसे ही पता ही नहीं चल रहा ना कि वो कि नियत का तो वो सीखा ही नहीं ना इल्म. जब इल्म ही नहीं सीखा तो पता किया कि नियत होती कैसे. नहीं नहीं मैं तो तरगीब के लिए दे रहा था. वो तरगीब के लिए किसको दे रहे, तो उसने क्या करना है तरगीब के लिए, उसको क्या पता कि आप क्या चाहते हो. तो आपकी नियत अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे कि यार बस पता चल जाए किसी को कि मैं इतना इबादत गुजार हूं, मैं इतना हूं. ये दूसरा पहलू ये है कि हमें बदगुमानी नहीं करनी. हम क्या करते हैं कि व्हाट डू वी डू स्ट्रेट अवे, हम बदगुमानी का होता है ना, वो एक वो कीड़ा चिपका हुआ इधर, वो लगा और वो अंदर ही अंदर ये जो भी कह रहा है ना, वो अब उसने लगा दिया मैं हाफिज, ये अब वो हाफिज नहीं भी है, ये हाफिज ही नहीं है, लगा हुआ उसके पीछे. भाई नहीं करे आज के दौर में, मतलब मैं आपको एक अर्ज करूं, आज के दौर में एवरीबडी लुकिंग फॉल्ट इन ईच अदर. क्या बाप, क्या बेटा, क्या शौहर, क्या औलाद, क्या कोलीग, क्या पार्टनर, क्या बिजनेस पार्टनर, क्या मस्जिद कमेटी, क्या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एक दूसरे के ऐप ढूंढने में लगा हुआ है, एक दूसरे की गलतियां ढूंढने में लगा हुआ है. कोई तो ऐसा हो ना जो गलतियां ढूंढ रहा हो बल्कि इग्नोर कर रहा हो, माफ कर रहा हो, ये ठीक होगा यार, ये ठीक होगा, कोई बात नहीं, मैंने गलत देखा होगा. कोई तो ऐसा आ जाए ना, हम बिल्कुल लेकर बैठे में हर बस गलती मिल जाए मुझे फिर छोड़ना नहीं है. इस कदर माशरे को हमने खराब किया है और इसमें सबसे बड़ा किरदार आप देखेंगे हमारे आसपास के हम लोगों का ही होता है. कोई बाहर से नहीं आ रहा है कि उसने ये किया, भाई उसने तो चलो कर दिया अपनी इबादत का बता के. आपको किसने बोला है आप जाकर दूसरों में डंडोड़ा फिरते रहे, तो ये भी तो गलती है ना, ये भी तो गलत चीज है ना कि आप खामखा किसी के ऐप के बारे में जाकर जो है वो लोगों को बताया जा रहे हैं, बताया जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है. मैं पिछले दिनों पढ़ा एक उसकी बात थी, हफीज भाई और वसीम भाई, एक औरत ना सीखने की बात, किसी ने कहावत लिखी है कि एक आदमी कहीं जा रहा था एंड ही डिस्कवर्ड द थिंग्स, ठीक है ना, वो कहता ना आकर तो अंडर कवर मामला था उसका, और कोई लेके जा रहा था, किसी ने पूछा क्या है इसके अंदर, तो उसने बोला अगर ये बताना होता तो अंडर कवर थोड़ी लेके जाता. मतलब इससे सीखने को मिला ना, अगर आगे लिखा हुआ है कि सीखने की बात ही, अगर उसको बताना ही था वो छुपा क्यों रहा था, वो ढक के क्यों लेकर जा रहा था. हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम खामखा तफ्तीश में लग जाते हैं, हम उसका दूसरा रुख देखने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का अपना सुकून बर्बाद हो गया. ये एक बहुत बड़ा हमारे आज के अंदर, हम कहना है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि हम लोगों के ऐप में, लोगों की गलतियों में, लोगों के मामलात में, उसके क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, गाड़ी कैसे ले ली, इन्हीं चीजों में फंसे हुए.
सही साहब, आई जस्ट वांट, माशाल्लाह, इट्स गुड दैट यू बोट दिस अप सो द व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड बोथ साइड्स.
जी,
बट यू नो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट्स हैपनिंग इज वी जस्ट जनरली टॉकिंग नाउ बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ सोशल मीडिया एंड पोस्ट एंड एवरीथिंग. Before, a person could hide these things a lot more easier. Now, what's happening? As soon as someone's done a good action, it's been posted. It's been put up, whether it's put up on social media, or we get it out. And sometimes it's very difficult that what we're doing is we're making other people involved in this sort of badgumani as well because of posting our actions. Like if there is no need to post our actions, why are we posting them? Involve someone else, and this is something else which we need to ponder over as well. Avoid such actions which can put someone else into a sin as well. This is something else which we are doing in society, putting everything we have done. You know, there's one side where whatever food is being cooked, you take a picture and it's been posted, right? And then the religious side, you're doing something maybe, say something. It's funny sometimes, there was a brother once that he says, look, I want you to take my picture. And I said, okay. And he just sat down and he raised his hands like this and he was making dua and he goes, I want you to take my picture in this form. Just think how sometimes we are going into this position.
So, it's
very difficult time. And this is especially in Ibadat, Sayyid Sahib. We need to really focus. Are we really doing? And I find it very difficult, especially when your own actions and you put it on your own profile. How to able to really, it really makes me think, how can I put my own good actions on my profile to make everyone aware that I am doing this?
Asal mein problem kya hai ki nayi gaadi hai, take a selfie, put on the status. New meal, take a selfie, put on the status. Birthday, my birthday, cake ki picture le, khichiye chale ji, status par dal dijiye. Gaadi liye, new car, take a selfie, put on the, shaadi ho gayi hai, chale ji, abhi picture dali, iske upar dal diya. Haj umre pe ja rahe hain, chale ji, uspe dal de. Halanki nahi pata ke pehle maine kaha nazar jo hai na, yaar
Allah
नजर लगती है. आप अपने बच्चों की जो है ना वो तस्वीरें लगा रहे होते हैं डेली. हम समझा पहले भी अर्ज की है कि ना, फिर नजर लगती है, फिर कहते हैं बच्चा बीमार रहता है, हर वक्त रहता है. आप पोस्ट क्या कर रहे हैं, नियत क्या है, क्या चीज है, ये पहले गौर कर लिया कर. ये इल्म में सीखना पड़ेगा.
शाह जी ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्ला कीतियां उन, लेकिन कितने लोग समझने उसने क्या नभाया क्या आए. ਜੇ ਆਖਸਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਉਮਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ 1990 ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ. ਜੋ ਬਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਇਸ ਚ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਇਹ ਪਏ ਕਿ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਚੋਂਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੇ. ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਅਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ. ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਾ. ਮਸਲਨ ਉਹ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰੂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਫੀਆਨ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਘਰੇਲਾ ਨੌਕਰਾ ਕੀ ਆਖਣਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਪਰ ਗਿਆ ਸਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਚ ਆਣ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸੇ ਕੀ ਬਾਨੇ ਹੋ ਜੇ ਉਸਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੈ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਯਾਰ ਚਾਰ ਮੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਬਾਈ ਨਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਰ ਗਿਆ ਸਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਤੁਸਾਂ ਨੀ. ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਲਿਆ ਉਮਰੇ ਪਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਦਿਆਂ ਉਮਰ ਤੇ. ਇਸ ਲਈ ਬਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਜਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ. ਸਰ ਸੁਫੀਆਨ ਸੌਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਸਰ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਅੱਜ ਪਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੁਫੀਆਨ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਅਹਲਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ ਅਸਾਂ ਹਨੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋ ਅੱਜ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੋੜੇ ਤੂੰ. ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਣੇ ਨਾ ਨੇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਣੇ ਜਿਸ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਣੇ.
ਠੀਕ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਐਸੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੋ ਐਸੀ ਰੱਖ ਲੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੇ ਨਾਮਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋ ਪਤਾ
ਅੱਲਾਹੁ
ਅਕਬਰ ਇਹ ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰੀਏਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਦਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਦਰਸੇ ਕਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰਾਤ ਕੀ ਤਹਜੁਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੀਏਗਾ ਸਰ.
ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇਰ ਵਾਸ ਦਿਸ ਵਨ ਯੰਗ ਮੈਨ ਵੈਰੀ ਪਾਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਹਿਮ ਸਮ ਫੂਡ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਵ ਵਾਸ ਯੂ ਵਰਕ ਨਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਸ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਸ ਹਾਊਸ ਵਾਸ ਯੂ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਹੀ ਯੂਸ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਫੂਡ ਟੂ ਅ ਪੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਰ 30 ਇਅਰਸ ਦਿਸ ਪਾਸ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਕੀਪ ਅ ਰੋਜ਼ਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਡ ਹਿਮ ਨੋ ਟੂਡੇ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਸਮਵਨਸ ਫਾਸਟਿੰਗ and they've come back from work. Everyone should hide in our day and age. That's what's happening in our society. But this individual, 30 years he fasted, and his family didn't even know. And after 30 years, they find out the food that we used to give him, he used to give it to the poor people. And he would keep roza every day. But another aspect which we have been discussing as well, unfortunately, what happens is anybody is doing something good. One person is just going to the masjid. He's going to show off. One person goes to Umrah, meaning, you know, such a great ibadah, going to Umrah and Hajj. He's just going to show off. You know, we've got this as a shocker in our mind that, oh, he's doing this to show off. Oh, he's doing that good, he's doing that to show off. Someone on the road is doing something bad, he's smoking drugs, he's drinking alcohol, won't say nothing to him. But as soon as someone is doing something good, he's showing off. The criticism starts. So definitely, first of all, any good deeds we do, try to keep it between ourselves and the court of Allah.
Problem hai, ye waqi bimari hai aur badi gandi bimari. Foran negative soch hoti hai. Ye apne mind ki baat ho, kehte na khabees guman khabees dil se nikalta hai. To ab gaur karna hai ki kisi ko dekha uski achhai dikh rahi hai nahi dikh rahi hai. Imama achha pehna hua hai, mashallah daadi achhi lag rahi hai, chamak raha. Ab ye aap dekh rahe ho, wo pehna aisa laga hua hai, tene aise laga hua. Aapki jo pehli soch hai na jo jati hai, wo batati hai ki aap kya ho. तो जैसे स्टेटस पे जो आप पोस्ट करते हो वही आपका स्टेटस होता है. तो बाहर हमारे पास एक पैकेज है, आइए उस पैकेज को लेते हैं.
मेरा बाबा जी आपसे सवाल है कि आजकल धोखा फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है. बाजार से कोई चीज लाओ या फिर कोई चीज ठीक कराओ, सब जगह धोखा हो रहा है. और अगर किसी को कह दो कि आपने मेरे साथ धोखा किया है तो फिर वो गुस्सा आ जाता है. इस तरह लड़ाई भी हो सकती है. धोखे फ्रॉड से कैसे बचा जाए?
अब अगर वाकई किसी ने धोखा किया है तो वो इस तरह जैसे धोखे से कोई माल उसने दे दिया, गलत चीज दे दी, तो अब ये है तो गुनाहगार और अजाब नार का हकदार. कारोबार में ये आमतौर पर हो रहा है ऐसा धोखा, मिलावट वगैरह. अगर मिलावट मुतलकन धोखा नहीं है, मिलावट है और अगर ग्राहक को पता है, दोनों को पता है कि ग्राहक को पता और मिलावट वाली चीज दी, तो अब ये धोखा नहीं है कि ये पता है. या ग्राहक को बता दिया गया कि भाई इसमें ये मेरा दूध जो है ना, इसमें इतना दूध भैंस का है, इतना गाय का है, इतना बकरी का है और इतना पानी है, तो अब ये मसलन जो था वो बता दिया, अब ग्राहक ने खरीदा, तो अब ये धोखा नहीं कहलाएगा. धोखा ये कुछ ना बताता और भैंस का दूध कह के उसको दे देता मिसाल के तौर पर, तो अब ये हुआ धोखा. तो इस तरह मतलब ये कि ये धोखा जो है ये गुना है, ना मुसलमान के साथ जायज ना गैर मुस्लिम के साथ इसकी इजाजत. तो हदीसों में धोखे की ममानत भी मौजूद. चुनाचे इब्ने माजा ने वासिला रदी अल्लाह तआला अनु से रिवायत की, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐब वाली चीज बाय की यानी बेची और उसको जाहिर ना किया, वो हमेशा अल्लाह तआला की नाराजगी में है. या फरमाया कि हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं. अब आप देख लीजिए कि किसी खतरनाक बात है कि बंदा धोखे से यानी कि कोई चीज उसमें ऐब है और वो ऐब जाहिर ना करे और बेच दे, तो हमेशा अल्लाह ताला की नाराजगी में. या फरमाया हमेशा फरिश्ते उस पर लानत करते हैं. एक और हदीस शरीफ में फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज बेचे जिसमें ऐब हो तो जब तक बयान ना करे उसे बेचना हलाल नहीं. तो धोखे के ताल्लुक से इस तरह की वहीदें पता चलेंगी ना तो भी धोखे से बचने का जहन बनेगा. एक और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बहार शरीयत जिल्द दूसरी सफा नंबर 672 हिस्सा 11 से मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको. सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गल्ले की ढेरी के पास गुजरे, उसमें हाथ डाल दिया. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उंगलियों में तरी महसूस हुई और इरशाद फरमाया, ए गल्ले वाले یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا، ارشاد فرمایا کہ تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ لوگ دیکھتے، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اب آج کل تو جو بھی چیز بیچتے ہیں اوپر عمدہ رکھتے نیچے، اب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں جو ہوتا ہے شاید، ہاں میرے خیال میں ساری دنیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ایسے سدھرے ملکوں میں جن کا توتی بولتا ہے وہاں بھی دیکھا ہے کہ پھل کی کوئی اپنے پیٹی وغیرہ دیکھے نا یا لے کبھی، تو اوپر بڑے پھل ہوں گے نیچے چھوٹے، گلے سڑے بھی نکل آئیں گے دانے۔ یہ ہے انٹرنیشنل پرابلم۔
امیر اہل سنت بھی جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، واٹ ڈو وی ڈو، آپ دیکھیں پیکیج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل کیا کرتے ہیں ہم اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بہت زبردست مدنی پھول تھے۔ آئیے کچھ کلام کی فرمائشیں ہوئی تھی انشاءاللہ، ہم عدیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا ہر مسائل زندگی کے بے شمار، اکیلا ہر مسائل زندگی کے بے شمار۔
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری وقت میں کیا نقد دنیا دیکھوں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں اب تو بس
چاچا چاچا
लाहौर शरीफ पढ़ लेते हैं 99 बलाएं दूर हो जाती है, फौरन फोन निकालते हैं, फोन के ऊपर लग जाते हैं, लगता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा।
Then you know, stages come where we have gaps. Now, for example, a student who's studying in college or university, he has a break, 20 minutes, then maybe 1 hour, maybe 2 hour break. Now, you are at work, you get 1 hour lunch break. There's many times that we have this break. Now, for example, behind the wheel, you have the traffic light is gone red. This is a break time as well. You got 30, 40 seconds, you're doing nothing. So we need to plan our time and we need to use our time. Now, for example, someone's got 10, 15 minutes free. So like you just mentioned, the first thing that happens, the phone comes out, social media, talk, 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 let's see what's happening. But in those 10 minutes, it'll take you 10 minutes to read one time Surah Yasin. You'll get the reward of reading the Quran 10 times, inshallah. You've got a few minutes, 4 or 5 minutes, Surah Ikhlas, you read 3 times, you get the reward of reading the Quran 1 time. So meaning these gap times that we get, Sayyid Sahab, we should try to use them to do the dhikr of Allah, read the Quran, and like you just mentioned, recite Durood-e Pak. Once you recite Durood e Pak, Allah's 10 mercies descend. You have 10 good deeds and your rank is elevated by 10 times. So it's just a matter of using this time wisely. Now, every single person, we all have 24 hours. No one's got 13 hours, no one's got 50. Everyone has got the same amount of hours. But what's the reason that some people, they only achieve a little bit in the 24 hours, whereas other people in a short period of time, they attain a big amount? The reason for this is the people who plan their time properly, they are those people that achieve a big amount in a short period of time. Now, and planning, Sayyid Sahib, is something that's very important in our life. If we plan our time, now, for example, before going to bed, you plan your time for tomorrow. What am I going to do? This time I'm going to be at work. This time I need to go to the masjid. This time I need to go to the ishtima. This time I need to go here. If you plan your time properly, inshallah, Azawajal, it'll be Madina. Now, for example, a doctor. A patient goes to a doctor. The doctor is not going to say to him straight away, okay, this is your treatment. No, the doctor is going to plan this. He's going to look at his history. What's your medical history? What do you do? What treatment have you had before? He's going to plan his time. So in the same way, our time, we need to plan this to achieve a big amount in return, inshallah.
Time waqi bahut hai. What do we do? Especially in our time. Day-to-day routine ki baat nahi. Spare time mein. क्या करते हैं ये है अब्दुल हनान भाई, आप भी को मतलब भाई यही देखा जा, टाइम मिला पट करके निकाला, अब पता नहीं क्या ऐसी वो बीमारी लग गई है इसके बगैर रह भी नहीं सकते। दुरूद शरीफ कितना पढ़ा आज आपने? मैंने अपने आप से सवाल कर लीजिए। कुरान कितना पढ़ा है? अपने आप से सवाल कर लीजिए। दुआएं कितनी मांगी? अपने आप से सवाल कर लीजिए। और मोबाइल पे क्लिक कितना किया है? ये भी अपने आप से सवाल कर लीजिए।
Sayyid Sahab, it's all missed time management in what we are doing. For example, we are sleeping late, and then we are obviously, when we are sleeping late, we are spending the day in sleeping. So where we were supposed to, if you went to sleep early, we would have got up for tahajjud or got up for fajr and read our fajr. Even if you look at it, you don't really need to rest much after fajr either. Or even you don't even need to rest after fajr in some cases. But it's what we do, what our habits have become. Sleeping that late sleep, Sayyid Sahab, it's basically changing everything in our lives. We some people, you find that sleeping so late, maybe 2 to 3 o'clock in the morning. And now, even if they go to bed at 12 o'clock or 11 o'clock or 10 o'clock, they won't able to sleep. Why? Because that routine has been made. They've been sleeping late and they're spending the day sleeping. And then it's hard for that person to get. Now, if someone is doing this, Aisam, how do you expect him to involve himself in worship or involve himself in doing things? Especially with the lockdown situation, things have become worse. Now we're spending so much time that night time. Even if someone's sleeping late, say, they could be that the person could involve himself in the reciting of the Holy Quran, in doing the zikr of Allah or opening up a book and reading. But no, our that time which we spend, it's either involved in watching movies or social media or these things, and we're wasting so much of our time in this. Then in involving ourselves in good deeds, we have less time for that. Because we've spent, because the barakah, the blessing is obviously in the early hours of the day where we were spending that time, and then you find out that the day's gone so quick, we haven't done nothing.
Kyun nahi kiya? Soye itna bada kaam kiya, bole bhai. We haven't done anything. You sleep for 10-12 hours. Aise aise Hafiz bhai wo gaye na, kitab mein padha tha, Nigani Shura ne bhi bayan kiya, ek shakhs tha, वो 12-13 घंटे सोता था. हकीम साहब के पास कहता है, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा नुस्खा दो, दवाई दो कि मैं थोड़ा और ज्यादा सो लूं. अल्लाह के बंदे कितना सोओगे? और फखर से बताते हैं, 10-12 घंटे कोई मसला ही नहीं है. मसला है भाई, इसका हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा. सोते में जिंदगी गुजार रहे हो, क्या होगा हमारा, क्या बने? एवरीथिंग विल बी अकाउंटेबल ऑन द डे ऑफ. ये सोना भी है ना, तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी, कितना सोए थे और ये किस तरह सोए थे. काश वजू करके सोए तो पूरी रात ऐसा इबादत में जो होता है ना कि फरिश्ते नेकियां लिख रहे होते हैं, वजू में सोना, सुन्नत के मुताबिक सोना, तो सोना भी फिर हमारे लिए वो सोना बन जाए ना, कि हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए. आधी से कम हो बेच 1/3 लाइफ तो सोते में गुजार देते हैं. 8 घंटे 10 घंटे तो कोई बात ही नहीं है. फिर कहते मैं दोपहर को भी सो गया था, तो चले दोपहर को कैलूला करना कहते एक सुन्नत है तो वो अदा करना. लेकिन आप पहले ही इतना सो गए थे मां बदौलत के, आगे का मामला क्या था, इसके ऊपर भी गौर करने की बात है. बड़ा अल्लाह हमारे हाथ पे रहम फरमाए.
शाह जी गल फिर उतें मुड़ी थोड़ी तो आई जानी ना कि तरबियत हो सी ना, तो तरबियत आए कि पता होना किस टाइम बच्च ये जो आने ना कि तुम क्या करने हो पंजाब च ही हम क्या करते हैं, वडू वडू तुम क्या करने हो भाई. जिस वेले तरबियत अच्छी हो सी ना तो उस वेले उसकी पता उसी कि खुशी होवे तो क्या करी ना, मुसीबत होवे तो क्या करी ना.
जी
मुसीबत है सबर करना मोमिन हो सी, तो ये तरबियत हो इसत है. खुशी हो सी तो अल्लाह ने शुक्र अदा कर सी. मोमिन हर हाल मजे चाहिए, खुशी होनी तो अल्लाह ने शुक्र करना, मुसीबत होनी. इस वास्ते अगर मुसीबत आई गई तो फिर असें की भी अगर शुरू से ही ये जब ग्रोइंग हुई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातें, अपने साहबान दी बातें, सारिया बातें मुश्किलों में किस तरह रहे सारा कुछ, तो उसने च भी फिर आजजी और हम्बलनेस और सबर हो सी उस बंदे विच. जी ये नहीं कि जरा जरा गल पर भड़की पैसी, अग लगी पैसी, ये करता हो ना. ये कमी है जो तुम फरमाया, तरबियत नहीं कमी है. तरबियत किताब पढ़ाने ना नहीं, सही माशाल्लाह है सा. तरबियत इस चीज ने ना आया कि बंदे च एहसास पैदा हो जाए क्या गलत है तो क्या ठीक है.
तरबियत सोबत
ये तरबियत एहसान जी मैं इधर चल सुन गल पाइया ना, सोबत चाहनी है
जी.
कि मैं अगर ये लॉकडाउन हो जासी, ये हो जासी, वो हो जासी, मैं क्या करना चाहिए, घर वाले क्या करना चाहिए, किस तरह गुफ्तगू करनी, किस तरह उठना बैठना, बेसब्री करनी कि नहीं करनी. और सारे ना फिर जिस दसिया ना कि अकाउंटेबिलिटी है
जी.
हर हर लम्हे नहीं है, सुते रहनी सन दसे इतने इतने घंटे सारा कुछ नहीं. अने कबर ही चार बंदा अफसोस करसी, हर बंदा अफसोस करसी. जो बुरे हो तो करसन नहीं करसन ना, नेक तो इस पर करसन के फलानी फलानी टाइम में कोई अल्लाह ने जिक्र किया ना करी रहा हमें गुजारिश हो रहा.
अल्लाह अल्लाह अल्लाह.
In regards to the question about lockdown, I just want to mention one thing here that, you know, at the moment it's lockdown again in the same sort of situation. Now, in regards to this, Bapu, again, planning your time properly, but there's another phrase and it's called recognize and eliminate distraction. Now, for example, what happens is a lot of our time is spent wasting our time. You know, we want to do something. Now, for example, a student doing some coursework. He wants to do that coursework. He wants to complete it. But the distractions are on the side. He's got his coursework in front of him, but he's got the mobile phone on the side. He's got his coursework in front of him, but on the internet, he's got Facebook open as well. So for us to achieve something, we must
focus
and remove all the distractions. And if you look at Mufti Qasim, a beautiful, beautiful personality and a beautiful point about him, you mentioned it about Darul Iftar, that just before he goes Darul Iftar, he checks all his messages. He replies to his messages. But now the time of Darul Iftar, when he's answering the question, his mobile is on the side and he's focused on that particular action. And this is something that we need to bring in our life, that when we are doing something, remove all the distractions and focus on your aim, inshallah.
Sahi, bilkul baat hai ki abhi to wohi hai na, Quran padh rahe ho to baar baar mobile check kar rahe ho, to salam idhar phera, pura gardan bhi nahi phiri hai, to bhaat pehle jeb mein chala gaya ki lagta hai pata nahi shayad yahi kahin hame lekar chala jayega, paar kara dega, pata nahi kaun sa paar karayega. Pehle hota tha ayatul kursi padhte the, tasbih fatima padhte the, کلمہ پڑھتے تھے اور بہت کچھ استغفار پڑھتے تھے, ابھی سب سے پہلے نماز سلام پھر اور موبائل چیک ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہرحال یہ کچھ ہم کر رہے ہیں, واٹ ڈو وی ڈو, وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہی اصل میں اس کا مطلب ہے, کیا کرتے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مبلغین سے ایک مدنی پھول لے لیتے, کیا فرماتے ہیں حفیظ بھائی؟
جی وہ مجھے اس شہر میں آئے قافلے کے وہ احساس زیاں جاتا رہا, وہ احساس ندامت نیکی سے اور نماز کا جانے کا جب احساس پیدا ہوئے گا نا, تو اس کو ہم بولیں گے کہ اس کا نفس لوامہ زندہ ہے. جب یہ نفس لوامہ جو بندے کو بتاتے ہیں نا, کوئی غلطی ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں اندر کا مفتی بولتا ہے نہیں یہ غلط کیا ہے, نہیں غلط کیا ہے, جب یہ مر جاتا ہے نا, تو پھر بندے کو احساس نہیں رہتا ہے نماز قضا ہوگی, یہ ہو گیا, منظر رہے گی, کچھ ہوگی. اور یہ نفس لوامہ حلال رزق جو والدین خود بھی کھاتے ہیں اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اور نیک لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. جب تک نفس لوامہ نہیں ہے, آپ کو کئی فجریں قضا ہوں گی, کئی نمازیں,
مطلب فکر ہی نہیں ہے.
فکر یا فکر تو دور کی بات ہے نا جی, اس کی فیلنگ بھی نہیں ہوئی,
شرم بھی نہیں, احساس بھی نہیں,
احساس ہی نہیں, مر جاتے ہیں پھر
رب کی نافرمانی ہو رہی. گناہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. صحیح بات, احساس نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟
Any money goes, any wealth goes, or our friends go somewhere, someone goes somewhere, we miss out. We feel all the pain. And you know, we can't sleep about it. Oh man, they went here and my money's gone, my wealth is gone, I've lost this, I've lost that. But when it comes to good deeds, we don't feel it. And this proves one thing, that our priorities are not right. If our priorities were right, that, you know, namaz is the most important thing, we need to obey Allah, we need to stay away from the disobedience of Allah, when these priorities will be there, we'll automatically feel the pain. But because the priorities are not there, we don't feel this pain. So it's important that we obviously be changing our mindset. And this is something, obviously concluding, what do we do? We need to realize what's the boundaries set by Sharia, remain within those boundaries. And we need to find out what actions are we doing that are outside the boundaries of Sharia, and we need to refrain from those.
Aapka message, mashallah, Sayyid Sahab, what we do and what we don't do in matters, it's reflecting. When we reflect, Sayyid Saab, we reflect on the worldly matters. Our every reflection is, okay, how am I going to earn? How am I going to bring this money in? How am I going to pay off my debts? How am I going to build my house, pay off my mortgage? It's how am I going to buy this car? How am I going to have these settees? Everything is related to the world. Never the thought comes into our mind that how am I going to be successful at the time of death? How am I going to be successful in my grave? I'm going to be successful. How am I going to be successful in giving the answers to the question on Nakirain? I'm going to be successful on the day of judgment when I've got to give an account for everything I've done in my life. So our focus, this is where our problem is. Our focus is on the dunya, and with no focus in the akhirah or what will happen in the next world, in the next life. Once we start focusing on the next life, say yourself, This dunya, everything, all this will come in place. Whatever we're going to get in the world, we're going to get. No matter what, the rizq which is written for us, today we are chasing day and night for, we're going to get it no matter what. But do we know that we're going to leave the world with iman? Do we know that on the day of judgment, we're going to be successful, we're going to be granted Jannah, or we're going to be ordered to go to the fire of hell?
What do we do? Always chasing dunya 24 hours. Tasbih bhi kar rahe ho na kisi se, to wo bhi dunya mangne ki ho rahi hoti hai. Yakeen kare, matlab koi cheez hai na, to wo bhi dunya ki, mujhe wo mil jaye uski tasbih kar rahe honge. اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا, ذکر کرنا, یہ بہت کم لوگوں میں اب نظر آتا ہے, یہ نہیں ہے لیکن بہت کم نظر آتا ہے. دنیا اس کی سیدھی سی مثال, جیسے انہوں نے بولا نا کہ یہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ کو ایمرجنسی ہو گئی, ہمارے اسلام بھائی تھا ان کو بیماری ہو گئی, تو انہوں نے بولا بھائی, اب ڈاکٹر نے بولا کہ 6 مہینے کے بعد ہم یہاں, تو بہت مشکل ہے, کہتے جی اتنے دنوں کے بعد MRI دیں گے. انہوں نے بولا کتنا پرائیویٹ کروا لیتے, اس نے جو بھی پیسے بنتے مثال کے طور پہ 300 pounds 200 pounds اس نے پے کیا, پھر اس نے کہا میں MRI کروا لیتا ہوں. اچھا کوئی کیس ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, فوراً جو یہ کیس ہو گیا چلو جی اس کے پاس جاتے ہیں سولیسیٹر کے پاس, کتنی فیس لیتا ہے 200-300 pounds وہ لیتا ہے 2-3 hours کسی بھی ایڈوائز کرنے کے, فوراً چلے جائیں گے. ہمارے دارالافتاء علماء کرام مفتیان کرام فری میں سروس دے رہے ہیں, نو چارجز, ہر چیز فری. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے دین کا آپ آ جائیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اتنے بجے اپوائنٹمنٹ لینی. آپ مسجد میں آتے مفتی صاحب دارالافتاء کھلا ہوا ہے, اس کی جو ٹائمنگ ہے اتنے صبح سے شام تک کی, پھر مسجد کے اندر ہمارے علماء کرام ہوتے فری سروس دے رہے ہیں, لیکن ہمیں اتنا وہ نہیں ہو رہا تھا. ہم کبھی جا کر پوچھ لیں حضرت کہ میرے سے یہ ہو گیا اس کا حل کیا ہے, میں نے یہ بول دیا اس کا حل کیا ہے, میری نماز رہ گئی, مجھے پتا نہیں تھا کہ اب میں کیا کرنا ہے, غلطی سے میں نے کھا لیا, غلطی سے انجیکشن لگ گیا, اب یہ اس کا کیا مسئلہ ہے, نماز ایسے ہو گئی, روزہ میرا. کوئی فکر نہیں ہے, ڈاکٹر کی فکر ہے, اکاؤنٹنٹ کی فکر ہے, سولیسیٹر کی فکر ہے. علماء ہماری سروسز فری میں دے رہے ہیں, دعوت اسلامی فری میں قرآن پڑھا رہی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان کو لے لیجیے, اوور 250,000 سے زیادہ ایڈلٹس جو ہیں وہ فری میں قرآن پڑھ رہے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں, لیکن ہماری اس طرف سوچ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں, جو ہو رہا ہے پھر وہ ہو ہی رہا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہرحال ہمارا ٹائم کم ہے, انشاءاللہ آپ کیا آخری میسیجز دینا چاہتے ہیں پلیز.
That we have to judge and we have to ask our conscience and we have to ask other people that what do we do in this situation. Coming back to the point, whatever we do, we must remain in the boundaries of Sharia. Every single action of ours must be in the boundaries of Sharia, and this is the thinking, this is the mindset, and these are those thoughts that will take us to Jannah, inshallah.
MashaAllah. Hafiz bhai, aapke
Dawat Islami shuru su yahani shami bait takho saaj kya kita مدنی نمات رکھا ڈا
سبحان.
تو اسے کیا آپ کو پتہ لگی جاسی میں نیکیاں کیتیاں گناہ کیتیاں جنتیاں نے راہ پر گیا یا اللہ نہ کرا جنمیاں نے راہ پر گیا. آج مرے کتھا کتھا وقت گزرے, کہڑے کہڑے گناہ میں کیتے تو کہڑے کہڑی نیکیاں ہوئی. آپ کو پتہ لگ جاسی کہ تسا دیہڑی وٹ ڈو وی ڈو, آپ کو سمجھ آئی جاسی.
اسی لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, جج یور سیلف بیفور یو بین جج آن دا ڈے آف ججمنٹ. اپنے کو ابھی چیک کر لو, اپنے ابھی محاسبہ کر لے, تو کوشش کریں مدنی نامہ کارڈ بھریں. عدیل بھائی آپ بھی کوئی دے دیں میسج, کیا دینا چاہتے ہیں؟
جی شاہ صاحب, جس طرح حفیظ بھائی نے مینشن کیتا کہ سارے اندر احساس ہی ختم ہو گیا. کیونکہ پہلے ہوندا سی نا کہ گناہ کر دے سن تے احساس ہوندا سی, پھر اللہ اساں اپنے رب دی بارگاہ چک جائیں یا اللہ اے گناہ ہو گیا. ہن اج کل تے گناہ کر کے اس نو گناہ ہی نہ سمجھ دے, اسنے اس نے کہ نہ کہ تے یہی ہے کہ احساس اپنے اندر پیدا کیتا جائے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے. دوسرا ہے کہ جس طرح فیض بھائی دسیا کہ اپنا محاسبہ کریے, ہر روز اپنا محاسبہ کر لیے کہ اگر تے ساڈیاں نیکیاں ودنیاں پیاں ہر روز, گناہ کٹ دن پہ, پھر تے چلو اساں سیدھے رستے چل رہے ہاں, تے جے اگر ساڈیاں نیکیاں ہر روز کٹ رہی ہیں, گناہ ود رہے ہیں, تے پھر اس دے پر سانو سوچنا چاہیے کہ اساں کیڑے رستے تے جا رہے ہیں.
ماشاءاللہ. عبدالحنان بھائی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟
صحیح صاحب, جسٹ وان ٹو فنش اپ, بیکاز واٹس ہیپننگ ان دی ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ, پیپل تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو کمنٹ آن ایوری تھنگ, آن پالیٹکس, آن دیز میٹرز, ایوری ون وانٹس ٹو گیٹ انوالو. I would say stop wasting your time in commenting on everything. Worry about ourselves. If everyone starts to worry about themselves, that what I need to do to change myself, what I need to do make myself better, I think we'll become a better society inshallah.
MashaAllah. Main aakhir mein ye arz karunga ke what do? We all worried about the future. Future about our children's, our family, our houses, bank balance, all this. میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آپ لوگوں کے فکر مند ہیں, اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے, بچوں کے فیوچر کے لیے. میں آپ سے یہ کہتا ہے واٹ یو شوڈ ڈو, کہ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے, آپ کا قبر میں کیا ہوگا, آپ کا حشر میں کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہونا ہے. جو پیدا ہو رہے تو ان کا رسک لکھ دیا گیا تھا, کب مرنا ہے, کیا ملنا ہے. آپ انہی کی فکر میں آپ اپنی آخرت برباد نہ کر دیں. تھنک اباؤٹ یور سیلف ایز ویل, کہ آپ کا فیوچر وہ کہ جو میرا حشر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, اس کی تیاری کرتے ہیں. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.
The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.